ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को अपने दीन का इल्म हासिल करने के लिए चुना और उसका मौका अता फरमाया। ये बहुत बड़ी सआदत है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि जिसके साथ अल्लाह तबारक ताला खैरन या खैरन अजीमन या खैरन कसीरन, बहुत बड़ी खैर या बहुत जो है ऊंची खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसको दीन की समझ और दीन का इल्म अता फरमाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने आपको इसका मौका अता फरमाया है और यहाँ उसके सारे असबाब भी आपके लिए जमा कर दिए गए। असातिदा है, किताबें हैं और हर तरह के सारे असबाब आपको दिए गए। यहाँ ज़ाहिरी असबाब, बातिनी असबाब, दिलो दिमाग, आँखें, कान, जबान, ये अल्लाह तबारक तआला ने आपको अता फरमा रखे हैं। अब आपका काम यह है कि आप अपनी दोनों किस्म के असबाब को इस्तेमाल करते हुए इल्मे दीन हासिल करने में अपने आप को पूरे तौर पर मशगूल कर दें। कोई भी ऐसी चीज़ जो इल्मे दीन के हासिल करने के राह में रुकावट बन सकती हो, आपका ध्यान और तवज्जो वहाँ से हटा सकती हो, उसकी तरफ आप ध्यान न दें। असल आदाब इल्म के अंदर लिखा गया है कि हुसूल इल्म में यकसुई मतलूब है। यकसुई का मतलब यह है कि आदमी अपना पूरा ध्यान इस पे लगा दे। इसीलिए कदीम ज़माने में लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि घर पर रहते हुए आम तौर पर कुछ न कुछ ऐसी सूरतें पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आदमी का ध्यान वहाँ से इल्म से हट करके उन चीज़ों में लगता है। गोया जर्रा बराबर भी आपका ध्यान किसी दूसरी चीज़ की तरफ होना नहीं चाहिए। अल इल्म ला यौती का बाज़हु हत्ता तौतियहु कुल्लक, अपना अपना पूरा सब कुछ जब तक कि आप इल्म को नहीं दे डालेंगे वहाँ तक इल्म आपको अपना थोड़ा हिस्सा भी अता नहीं फरमाएगा। इसलिए असल यही है कि यहाँ रहते हुए आपको ऐसी शक्ल इख्तियार करनी है कि आपका ध्यान, आपकी तवज्जो पूरे पूरी उसूल इल्म की तरफ हो। अगर ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह इल्म का हासिल होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए नीयत भी खालिस और दुरुस्त होनी चाहिए अल्लाह की रजा और खुशनुदी की। ये दीन, ये इल्म जो है हमें ये बतलाता है कि कौन से कामों से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, कौन से कामों से नाराज़ होते हैं। आप इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं कि इसको हासिल करने के बाद अल्लाह की रजा वाले काम करेंगे और नाराज़गी वाले कामों से अपने आप को बचाएंगे और उसके बाद फिर दूसरे अल्लाह के बंदों को भी ये चीज़ पहुँचाएँगे। ये नीयत होनी चाहिए इखलास के साथ, कोई और नीयत ना हो इसके अंदर। यानि कोई दुनिया हासिल करने की नीयत या लोगों के ऊपर, जो लोग इल्म वाले नहीं हैं, जाहिल हैं, उनके ऊपर अपनी बरतरी और फौकियत जतलाने की नीयत, ऐसी कोई नीयत होनी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ आपको उसके लिए भरपूर मुजाहदा, भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे असलाब तो इतनी ऐसी मेहनत करते थे कि हम और आप तो उसका तस्वूर भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल इस मेहनत का भी ये होना चाहिए, रात और दिन इसी में लगे रहिए, इसी को अपना ओढ़ना और बिछौना बना दिए, किसी और की तरफ, और चीज़ की तरफ आपका ध्यान ना हो। मोबाइल से तो आपको बिल्कुल एकदम एलर्जी होनी चाहिए, यानी आपके पास दूसरे के मोबाइल को भी देख कर के आपको बेचैनी हो जाए कि ये कहाँ, ये मुसीबत कहाँ आई है, ये कोई जहर है। तो इसलिए कि यही वो है जो आपकी सारी यकसुई को ख़त्म करने वाली चीज़ है, सलाहियतों को बर्बाद करने वाली चीज़ है। इसलिए उससे दूर रहते हुए अपने आप को मशगूल रखिए, अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम, ऐसा उनके साथ इस तरह पेश आए, उनका अदब एहतराम रहे, इसलिए कि ये हमारे लिए इल्म के हुसूल का जरिया है। अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। दारुल असबाब का मतलब यह है कि हर चीज़ का कोई ना कोई सबब, ऐसे तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, बग़ैर किसी सबब के हमें सब कुछ अता फरमा सकते हैं, और कभी किसी बंदे के मामले में अल्लाह की शान का जहूर भी हो जाता है। लेकिन आम दस्तूर यह है कि असबाब यानी हर चीज़ का जो सबब होता है, उस सबब के ज़रिए से उसको वो चीज़ मिलती है। जैसे अगर आप दूध हासिल करना चाहें तो दूध आपको गाय के ज़रिए से मिलेगा, बकरी के ज़रिए से मिलेगा, भैंस के ज़रिए से मिलेगा, समझना है कि नहीं। अब ये यही वो जानवर हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों को दूध देने के लिए बनाया है। कोई आदमी ये सोचे कि ये गाय नहीं, ये बकरी, मैं तो शेरनी से दूध लूँगा, मुझे इन बकरी से दूध नहीं लेना है, तो उसको कह ले लो मेरे साहब, समझना है कि नहीं। मिलेगा तो यहीं से अगर आप चाहते हैं। इसी तरीके से इल्म जो है अल्लाह तबारक ताला उसका इल्का फरमाते हैं उस्ताद के कल्ब पर, और उस्ताद के दिल के वास्ते से आप पर अल्लाह ताला की तरफ से उलूम का फैजान होगा। पहला फैजान वहाँ होता है, वहाँ से आप तक पहुँचेगा। आजकल चूँकि कुछ ऐसे असबाब पैदा हो गए हैं, उन असबाब की वजह से हमारे तलबा को कुछ गलत फहमी हो जाती है, तो ये कंप्यूटर है, ये सीढ़ियाँ हैं, और इसमें ये सब कुछ है, हम तो वो चालू करके जो है सुन लेंगे, हमें दरस में शरीक होने की ज़रूरत नहीं है, हिदायत की शरह जो है फलानी कंप्यूटर पर ये करके सुनकर जो है हासिल कर, नहीं। ऐसी लाख सीढ़ियाँ आप इस्तेमाल करें लेकिन इल्म नहीं आएगा। इनको, इन सीढ़ियों को और इस कंप्यूटर को अल्लाह ताला ने आपके लिए हुसूल इल्म का सबब बनाया नहीं है, इसलिए इसके ज़रिए से इल्म आएगा ही नहीं, ये बात तय है। इल्म तो आएगा उस्ताद की तवज्जो से। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि तालिबे इल्म जो है ज़हीन होता है और उसका हाफ़ज़ा भी कवी होता है, सलाहियतें अच्छी होती है, और उस्ताद जब पढ़ाता है तो कभी ऐसा होता है कि उस्ताद को ये मुतालिक वही समझता है कि उस्ताद से ज़्यादा तो मुझे आता है, मैं जो है उसका इन किताबों में देख लेता हूँ। ये भी बड़ी गलत फहमी है। मैंने अभी जैसा कि कहा नहीं कि ये किताबों से नहीं, किताबें भी आस्था एक सबब है, असल तो इल्म का फैजान अल्लाह की तरफ से उस्ताद के कल्ब पर होता है और उसके वास्ते से आपके कल्ब पर होगा। जब इस वास्ते को आप अगर ख़त्म कर दोगे तो इल्म नहीं आ सकता। इसलिए उस्ताद कैसा ही कमज़ोर क्यों ना हो लेकिन बाहर वो उस्ताद है। जैसे किसी का बाप हो, बाप कैसा ही हो लेकिन बेटा वजूद में आएगा बाप के ज़रिए से ही, बाप के बगैर वजूद में नहीं आ सकता। चाहे बेटे के अंदर अच्छे अच्छे कमालात हो, वो अल्लाह बाद में दे, वो आज दूसरी है। आप आगे जाकर के उस्ताद से कमालात में बढ़ जाएं, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की देन है। लेकिन अभी जब पढ़ रहे हैं उस वक्त ये ना समझें कि मैं उनसे बड़ा हूँ, बल्कि आप उनको अपना ताबे, अपने आप को उनके ताबे रखिए और उनकी भरपूर जो है इज्जत कीजिए, उसका अदब और एहतराम कीजिए। जब ये सब आप करोगे तब अल्लाह तबारक तआला आपको इल्म से नवाजेंगे। आजकल एक बड़ी कमी जो आती है इल्म के हुसूल में, रुकावट, वो ये भी होती है कि असातिज़ा की जो अदब व एहतराम के हुकूक हैं उनकी अदायगी में बड़ी गफलत भी बरती जाती है। हमारे असलाफ तो ये थे, ऐसे थे कि अपने उस्ताद के सामने किताब का वरक उलटते हुए भी इस अंदाज से उलटते थे कि उसमें आवाज़ पैदा ना हो और उनको तकलीफ ना हो, ऐसा इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये गोया आदाब की रियायत, उस्ताद की का अदब, किताब का अदब, आलात इल्म का अदब, इल्म हासिल करने में जो जो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं उन सब का अदब। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, पहले ज़माने में कलम इस्तेमाल होता था तो कभी कभी लिखते लिखते अंदर रोशनाई मौजूद है लेकिन लिखते लिखते वो रुक गया, तो उसकी रोशनाई को फिर दोबारा जो है जारी करने के लिए उसकी जो नीब की नोक होती थी उसको यहाँ रख करके ज़रा दबाते थे, तो वो जो रुकावट दूर हो जाती थी फिर चालू हो जाता, तो उसकी वजह से ये नाखून के ऊपर जो एक नुक्ता पड़ गया। अदश मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह को नबी इस लिखने के दौरान ऐसी सूरत पेश आई किया था, अब वो वहाँ रहा, उनको याद नहीं रहा, قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں پہنچے, ابھی تو بیٹھے نہیں تھے اور اس پر نظر پڑی, وہ فوراً باہر نکلا ہے, یہ میرے ہاتھ پر لگا ہوا ہے اور میں اس طرح نہیں, باہر نکل کر اس کو دھویا اور اس کے بعد جو ہے قضاء وہ بیت الخلاء میں گئے. اس نقطے کا اتنا لحاظ کیا. اب ہم تو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اس کی, اس میں کیا ضروری ہے, کیا اس کی حاجت ہے. نہیں بھائی, اس کا بڑا لحاظ ہونا چاہیے. درسگاہ کا ادب, کتابوں کا ادب, ساتھیوں کے ساتھ محبت ہو, جو ہے محبت اور خیرخواہی کے ساتھ پیش آنا, ہر ایک کی بھلائی چاہیں, اپنے ساتھیوں پر کوئی حسد نہ ہو, بلکہ ہم چاہیں کہ بس ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب نوازے, مجھے بھی نوازے. تو کسی کے ساتھ جھگڑا, یہ جھگڑا جو ہے ویسے بھی برکتوں کو ختم کرتا ہے. ایک مرتبہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو جو لیلۃ القدر کب ہے, اللہ نے آپ کو اس سے آگاہ کیا تھا, وہ بتانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلے, اور وہ بتانے کی نوبت آئی ہے, اس سے پہلے ایک منظر دیکھا حضور نے کہ دو صحابی آپس میں کسی وجہ سے جو ہے تو میں کر لڑ رہے ہیں, ان کا جھگڑا حضور نے ختم کیا. اس میں جو مشغولی ہوئی تو وہ جو لیلۃ القدر کی تعین اللہ نے بتائی تھی وہ ذہن سے نکل گئی. حضور نے فرمایا دیکھو یہ جھگڑے کی وجہ سے, اس میں لکھا ہے علماء نے کہ جھگڑا جو ہے وہ برکات کو ختم کرتا ہے. اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اخلاق اونچے رکھو, ہر ایک کے ساتھ محبت سے. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ابھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے. اگر یہ انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. ویسے تو ایک نصیحت کر دیتا ہوں کہ اصول علم کے لیے جن جن آداب کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے, اب یہ علماء نے لکھ دیے ہیں کتابوں میں, ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اردو میں آداب المتعلمین, وہ آپ حاصل کر لیجئے, اس کو دیکھیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا کر علم کے اندر لگیے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ ان طلباء کو علوم نافعہ ہمارے سارے اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, اور اس ادارے کو بھی ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس ادارے کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما, اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.